ओम शांति। अभी का हमारा विषय क्या है? यथार्थ साधना। यूं तो हम सभी साधना कर ही रहे हैं, लेकिन साधना के आगे एक विशेषण लगा दिया, यथार्थ साधना। जैसे कोई कुछ कार्य करता ही है तो कार्य तो कर रहा है, लेकिन कहते ठीक से करो ना, कर तो रहे हो पर ठीक से करो ना, या कहिए कर तो रहे हो प्यार से करो ना, तो सामने एक एडजेक्टिव लगा दिया कि कार्य करो, सेवा करो, कुछ भी करो, उसमें एक विशेषता भरो। तो उस विशेषता भरने से क्या होगा? वो कार्य का परिणाम अनेक गुणा बन जाएगा। होगा भले छोटा सा कार्य, लेकिन उसकी प्राप्ति बहुत अधिक हो जाएगी। तो ऐसे ही डेफिनेटली हम सब साधना के लिए भट्टी में बैठे हैं, मतलब साधना के लिए बैठे हैं, लेकिन उस साधना को हमें क्या करना है? यथार्थ बनाना है। अब क्या होता है यथार्थ बनाना साधना को? पहले तो ये समझ ले कि साधना क्या होती है। एक शब्द आता है साध्य, दूसरा आता है साधन, तीसरा आता है साधना, चौथा आता है साधक, और पांचवा आता है सिद्धि, छठवा आता है सिद्ध पुरुष, है ना? तो साध्य क्या है कि आपका गोल अचीव क्या करना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है, कौन से लक्ष्य को आप हासिल करने जा रहे हैं, उस लक्ष्य को कहा जाता है साध्य। फिर उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ टूल्स यूज करेंगे। जैसे अगर भौतिक लक्ष्य हो, जैसे मुझे यहां से ज्ञान सरोवर जाना है तो मुझे कार चाहिए होगी ना, बस, कार, कुछ तो साधन चाहिए होगा ना। तो ऐसे ही ये अध्यात्म मार्ग में भी जब हम साधना कर रहे हैं, कोई एक लक्ष्य बनाया है तो उस लक्ष्य को कहते हैं साध्य, और जो टूल्स यूज करेंगे उसको कहेंगे साधन, और उस टूल्स को लेकर जिस मेथड से चलेंगे उस साध्य को हासिल करने के लिए, उस मेथड को कहेंगे, उस विधि को कहेंगे साधना, और जो ये साधना करेगा वो होगा साधक। और अगर वो ये साधक साधना साधन को यूज करके साधना में सफल हो गया, साध्य को हासिल कर लिया, तो उसको कहेंगे सिद्धि प्राप्त हुई, और जिसको प्राप्त हुई उसको कहेंगे सिद्ध पुरुष, है ना? तो अभी हमें देखना है कि क्या हमें सिद्धि प्राप्त होती है तो हमारी साधना सफल है। आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा हमें? आपकी रॉयल्टी कैसी होनी चाहिए? देवताओं से भी ऊंच हमारी, उससे भी जास्ती हमारी रॉयल्टी होनी चाहिए। क्यों? क्यों होनी चाहिए उससे भी जास्ती हमारी रॉयल्टी? हम निराकारी आकारी कुल के हैं, साकारी, साकार के भी हैं और निराकारी कुल के भी हैं, क्योंकि जब हम देवता होंगे तब साकार भी होंगे, सिर्फ उस परम धाम का ख्याल थोड़ी होगा, उस परम पिता का ख्याल थोड़ी होगा, आत्मा का होगा, लेकिन वो भी नेचुरल होगा। उसके लिए हमें बार बार जैसे यहाँ पे स्मृति में ला रहे हैं, उसका सोच चला रहे हैं, सोच में नहीं होगा, स्मृति में अपने आप होगा। जैसे एक राजा के घर के बच्चे को स्मृति में रहता है ऑटोमेटिकली कि मैं राजकुमार हूं, बार बार सोचता थोड़ी है मैं राजकुमार हूं, मैं राजकुमार हूं, लेकिन राजा के घर में पैदा हुआ हूं ना मैं, तो स्मृति में अपने आप मर्ज मतलब भरा पड़ा है, उसको सोचने की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही जब हम रियल में देवता होंगे, वो हमारे स्मृति में होगा, हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं आत्मा हूं। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं? हाँ, तो अभी सोचना, तो अभी हम चूंकि अभी निराक बाबा हमारे साथ हैं, और बाबा ने कहा कि तुम्हारी रॉयल्टी, क्योंकि बाबा हमारे साथ है ना, तो उनसे भी ऊंच होनी चाहिए। इसका मतलब इशारा बाबा क्या कर रहे हैं, सोचना स्वरूप से हटकर स्मृति स्वरूप में आ जाओ। पहले दिन भी कहा ना, हमने सुना बहुत है, बहुत सुन लिया है, जरूरत है उसके स्वरूप बनने की। और वही बात आज बाबा ने कह दी कि तुम्हारी रॉयल्टी देवताओं से भी ऊंची होनी चाहिए। किन बच्चों का मुखड़ा सदा खिला रहेगा, किन बच्चों का मुखड़ा सदा खिला रहेगा? जी, जिनको गुप्त खुशी होगी कि हमें बाप से वर्षा मिलता है, विश्व के मालिक बनते हैं, ज्ञान और योग के बल से हम सतो प्रधान बनते हैं, आत्मा पवित्र होती जाती है, आत्मा में ताकत भरती जाती है, नई दुनिया का राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा। तो मुखड़ा हमेशा खिला रहेगा। तो हमारी साधना तो इसी के लिए है, सतो प्रधान बनने के लिए, गुप्त खुशी में रहने के लिए। अब हमें पूछना है अपने आप से, क्या मुखड़ा सदा खिला रहता है? क्या मेरे जीवन से देवताओं से भी ऊंची रॉयल्टी झलकती है? है ना, ये पूछना पड़ेगा ना अपने से। और अगर उत्तर में आता है कि डेफिनेटली खुशी रहती है, डेफिनेटली रॉयल्टी भी रहती है, पर सदा नहीं, है ना, अंडरलाइन का ना विशेषण है एक सामने, पर सदा वाला शब्द उसमें लागू नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब हम साधना तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी साधना यथार्थ साधना नहीं है। तो क्या होती है यथार्थ साधना? जैसे कहा, ज्ञान और योग के बल से सतो प्रधान बनना है, और देवताएं सतो प्रधान होते हैं, है ना, सत्युग में सतो प्रधान, त्रेता में सतो सामान्य, द्वापर में रजो प्रधान, कलयुग में और संगम में तमो प्रधान से सतो प्रधान की यात्रा चल रही है हमारी। तो इस यात्रा में हम कहां तक आगे बढ़े हैं, वो तो हमें अपनी साधना को भी चेक करना पड़ेगा ना। अगर नहीं बढ़ रहे हैं, हाँ, बाबा की एक मुरली है, 25 मार्च 1990 अव्यक्त मुरली, कहा ना, नया कुछ नहीं पढ़ेंगे सुनेंगे हम, रिवीजन ही चलेगा, उस मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर डेफिनेशन दी है साधना की, यथार्थ साधना की। क्योंकि जो प्राप्तियां हमें इस ब्राह्मण जीवन में होनी चाहिए, जैसे कहा साधना का लक्ष्य क्या है हमारा, जैसे कहा ना पांच बातें कही, साध्य, साधन, साधना, साधक, सिद्धि, सिद्ध पुरुष। तो हमारा साध्य क्या है, लक्ष्य क्या है हमारा, सत्व प्रधान, और सत्व प्रधान तक पहुंचना माना वर्तमान में मुझे क्या होना चाहिए, मुझे कौन सी प्राप्ति होनी चाहिए, अतीन्द्रिय सुख की मुझे अनुभूति होनी चाहिए। होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? स्वीट साइलेंस की अनुभूति होनी चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति। क्योंकि जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं था, यही सब कुछ था शरीर, तो ये इंद्रियों की तृप्ति में लगे हुए थे ना, इंद्रियों के सुख को ही सब कुछ समझ लिया था। लेकिन बाबा ने आके करेक्शन किया कि तुम तो देह हो ही नहीं, देह तो तुम्हारी कॉस्ट्यूम है, तुम्हारा वस्त्र है, चोला है, कपड़ा है, ये तो तुमने धारण किया है, तुम ये नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। और इसलिए अब कौन सा सुख हमें अनुभव करना चाहिए, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हमें होनी चाहिए, हमें स्वीट साइलेंस का अनुभव होना चाहिए। ये है हमारा साध्य। तो हमें अनुभव होता है, होता है, पर सदा नहीं होता है। और बाबा ने उस मुरली में बहुत स्पष्ट कहा है, इसका आधार है पवित्रता। क्या आधार है? पवित्रता। तो हम चिंतन तो बहुत कर लेते हैं कि मैं पवित्र आत्मा हूं, लेकिन चिंतन से आगे भी तो बढ़ना होगा, उसे धारण भी तो करना होगा। ये तो श्रवण किया पहले, बाबा के बने ज्ञान सुना, मना श्रवण किया ना, और जैसे ही श्रवण किया, अच्छा मैं पवित्र आत्मा हूं, ये कानों से अंदर गई बात, तो श्रवण किया, उसके बाद धारण, उसके बाद धारण, और उसके बाद वो जीवन में उतरे ना, मेरे जीवन से दिखाई पड़े। और मेरे जीवन से पवित्रता कैसे दिखाई पड़ेगी, भाई मैंने संकल्प में कह दिया, श्रवण किया था, बाबा का 7 डेज कोर्स किया, और बाबा की मुरलियां रोज सुनी, रेगुलर बने, रोज कानों में ये शब्द पढ़ रहे हैं बाबा की मुरली के द्वारा कि बच्चे तुम पवित्र आत्मा हो। कमेंट्री करते उसमें भी श्रवण ही हो रहा है ना, तो श्रवण की आगे स्टेप में जाना है या सिर्फ श्रवण तक रहना है? हाँ? तो श्रवण से आगे भीतर धारण करना है, धारण के बाद तो आचरण में आएगा ना, धारण के बाद तो आचरण में आएगा ना। तो आचरण में कैसे आती है पवित्रता? मेरे हर संकल्प में, मेरे हर कर्म में, मेरे हर बोल में पवित्रता हो। बाबा ने उसमें स्पष्ट किया है कि सिर्फ ब्रह्मचर्य ही पवित्रता नहीं है, और ब्रह्मचर्य फिर भी इतना कठिन नहीं है, वो तो फिर भी ब्रह्मचर्य कितने, हम सब बाबा के बच्चे बन चुके हैं ना, ब्रह्मचर्य धारण कर लिया है ना, परंतु बाबा ने एडिशन किया, ब्रह्मचारी नहीं सिर्फ ब्रह्माचारी। और उसमें बाबा ने स्पष्ट किया कि एक ब्रह्मचारी तो बन गए हैं लेकिन ब्रह्मचारी भी बनो, अर्थात मेरा संकल्प, मेरा कर्म, मेरा बोल रूपी कदम ब्रह्मा के कदम पर बढ़े, तब हम कहेंगे ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी प्लस ब्रह्मचारी तब होगा कंप्लीट पुरुषार्थ, वरना तो वो अधूरा पुरुषार्थ है। क्योंकि बाबा कई बार कहते हैं ऐसे ब्रह्मचारी तो आजकल दुनिया में भी बहुत रहने लग गए हैं, क्योंकि संसार के सीन को देखकर घर बसाने की इच्छा नहीं होती आजकल। क्या करेंगे घर बसा के, हाँ अकेले हैं तो फिर भी अच्छे हैं, हाँ उसको लेके आएंगे तो फिर पता नहीं क्या हाल होगा, क्योंकि संसार की सीन दिखाई पड़ रहे हैं ना। तो ऐसे भी लोग ब्रह्मचारी बन ही जा रहे हैं, परंतु उस ब्रह्मचर्य को पालन करने से, ब्रह्मचारी बनने से जितनी प्राप्तियां होनी चाहिए उतनी नहीं होंगी, क्योंकि वो अधूरी पवित्रता है। अभी संकल्प की, बोल की, कर्म की भी तो पवित्रता चाहिए। तब कहा कि ब्रह्मचारी भी बनो और ब्रह्माचारी भी बनो। और जब ये पवित्रता हमारे हर संकल्प से, बोल से, कर्म से दिखेगी, चेक पॉइंट माना होगी, मैं कहूं कि मेरे संकल्प में पवित्रता है, मैं कहूं कि मेरे कर्म में पवित्रता है, मैं कहूं कि मेरे बोल में पवित्रता है, कहने से हो जाएगा क्या? चेक पॉइंट आएगा या नहीं आएगा? उस पवित्रता की, उस रूहानियत की झलक मेरे सूरत से दिखनी चाहिए, मेरे नैनों में वो निर्मलता दिखनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि हाँ सचमुच हमारे संकल्प में, बोल में, कर्म में पवित्रता है। और उसके लिए फिर बाबा ने आगे कहा कि बाबा के साथ क्या होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। वहीं पे बाबा ने डिफाइन किया उस मुरली में कि साधना अर्थात शक्तिशाली याद, साधना अर्थात शक्तिशाली याद, और अगली लाइन में कहा निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। याद तो है ही, परंतु एडिशन क्या किया, निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। और आगे बाबा ने कहा कि याद मतलब ये नहीं कि शरीर से बैठ गए और याद में हम बैठ गए, इसको सिर्फ साधना नहीं कहते हैं, लेकिन कहा जैसे शरीर से एक स्थान पर बैठ जाते हो, मतलब शरीर की पार्किंग कर देते हो, अभी शरीर को कहीं नहीं लगाना, ऐसा ही हुआ ना। तो जैसे शरीर को एक स्थान पर टिका देते हो, ऐसे मन भी, बुद्धि भी और दिल भी साधना की तरफ लगा हो, बाप की तरफ लगा हो। ऐसे नहीं शरीर एक जगह बैठा हुआ है, मन कहीं और तरफ जा रहा है, बुद्धि कहीं दूसरी तरफ और दिल में कुछ और चल रहा है। मतलब चार बातें हो, शरीर भी स्थिर, मन भी स्थिर, बुद्धि भी स्थिर और दिल भी स्थिर, चारों उस परमात्मा के प्रति, उस बाप के प्रति, उसकी ओर स्थिर हो जाए। और तब कहेंगे यथार्थ साधना। और आगे फिर बाबा ने कहा, अगर साधना यथार्थ नहीं है तो आराधना चालू हो जाएगी। क्या चालू हो जाएगी? हाँ, जैसे बाबा कहते ना कि अगर यथार्थ याद नहीं है तो फरियाद चालू हो जाती है। समझ में आई बात? तो क्लियर हुआ यथार्थ साधना मतलब? हाँ, इतना क्लियर डेफिनेशन बाबा दे रहे हैं, शरीर भी स्थिर, मन भी स्थिर, बुद्धि भी स्थिर, दिल भी स्थिर। और अगर ये नहीं है माना आराधना चालू होगी। इसका मतलब साइलेंस का इम्पोर्टेंस समझ रहा है? साइलेंस का कल जो हमने कहा था ना, कि हम ये नहीं कह रहे कि श्रवण मत करो योग में भी, परंतु श्रवण के बाद फिर मौन अपना, क्योंकि जिसे कहा ज्ञान और योग के बल से सतो प्रधान बनना है। ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? समझ क्या है? यह हमने बाहर से सुना ना, पहले 7 डेज कोर्स करने आए तो हमने सुना कि ज्ञान स्वरूप तो तुम हो ही, तुम तो प्रेम स्वरूप हो ही, तुम आत्मा हो, तुम परमात्मा के बच्चे हो, हाँ तुम कल्प कल्प के अधिकारी, बहुत सारा ज्ञान हमने सुना है। लेकिन वो भीतर से अब अनुभव हो ना, मैं पवित्र हूं, ये तो ज्ञान बाहर से सुना, अब भीतर से मेरी स्थिति ऐसी हो कि वो मुझे भीतर से रियलाइजेशन, वो अनुभव हो रहा है कि मैं शांत हूं, वो शांति की अनुभूति भीतर से बाहर इमर्ज हो, वो मेरा पवित्र स्वरूप भीतर से बाहर इमर्ज हो, वो तो हूं ना मैं तो हूं खुद, वो भीतर से इमर्ज हो बाहर। ये कब होगा? भीतर से बाहर आए कब होगा? हाँ, भीतर से बाहर आए कोई चीज, उसके लिए जैसे अभी इस ग्लास में पानी है लेकिन ऊपर ढक्कन है उसको, तो पानी अगर मुझे चाहिए तो मैं ढक्कन को, ढक्कन हटे तो पानी बाहर आए ना। अब हम आत्माओं को जो बाबा कह रहे सतो प्रधान बनना है, कहां से? सतो प्रधान से उतरकर हम तमो प्रधान बन गए। अब तमो प्रधान से, तो तमो प्रधान माना क्या और सतो प्रधान माना क्या? सतो प्रधान माना वो आत्मा जिसके ऊपर ढक्कन है ही नहीं अभी, और तमो प्रधान आत्मा माना जिसके ऊपर ढक्कन आ गया है। किसका ढक्कन आया है? 63 जन्मों के पापों का जो किचड़ा है, हाँ, भक्ति मार्ग के अंदर इसको कहते हैं आत्मा के ऊपर मल चढ़ गया है, आत्मा में विक्षेप आ गया है, आत्मा में आवरण चढ़ गया है। आज देखो, कल गणपति का दिवस था, गणेश चतुर्थी का, हाँ सभी जानते हैं ना गणेश की उत्पत्ति कैसे हुई थी, जानते हैं ना कि पार्वती ने तैयार किया, नहाने चली गई, उसको गार्ड के रूप में रखा, उसको परिचय दिया नहीं था कि तुम्हारा पिता कौन है, क्योंकि खुद ने तैयार किया है। हाँ देखो, गर्भ की उत्पत्ति नहीं है, गर्भ की उत्पत्ति नहीं है गणेश, और इसलिए जब वो नहाने चली गई है तो इसको परिचय नहीं है ना मेरा पिता, उसने तो सब तैयार कर दिया, उसको तैयार करके प्राण प्रतिष्ठा करके उसने पूछा तो मैं मुझे क्या करना है, तो कहा मेरी रक्षा करो। अभी रक्षा करने खड़ा हुआ तो शिव जी आ गए। अब ये तो पहचानता नहीं है, तो दोनों में अच्छी लड़ाई हो गई और उस लड़ाई में उसका गला कट गया। तो ये क्या कर रहा था गणेश जी बीच में? रक्षा के नाम पर भले वो माता का पालन ही कर रहा था आज्ञा का, लेकिन शिव को शक्ति से मिलने नहीं दे रहा था। पार्वती माना क्या? शक्ति ना। बाबा कहते ना तुम शक्तियां हो, मैं शिव हूं। शिव शक्तियां गीत गाते हैं ना, अभी थोड़े दिनों के बाद देवियों के भी दिन आ जाएंगे और कलकत्ता वाले तो देवियों के लिए फेमस है। हाँ, कोई भी देवी। तो शिव शक्ति मिलन, हाँ, गीत हमारे क्या बजते हैं, शिव शक्तियां आ गई, ऐसा ही गीत गाते हैं ना। तो कब शिव शक्ति आई? हम तो वही है ना, जब तक ज्ञान नहीं मिला तब भी हम थे, लेकिन अब हम शिव शक्तियां बन गई। क्यों? क्योंकि हम शिव से मुलाकात हो गई है। तो यहां पर क्या बताया गणेश जी केस में भी, ये शिव और शक्ति का मिलाप तब तक नहीं हो सकता जब तक बीच का देह अभिमान नहीं हटेगा। किससे तैयार हुआ था गणेश? शरीर की मैल से। और शरीर की मैल माना ही हमारे देही देह अभिमानी, हमारी जो स्मृति रहती है, जो बॉडी कॉन्शियसनेस में हम जीते हैं। और इसका जब तक गला नहीं कटेगा, होता है ना हम 7 डेज कोर्स तो कर लेते हैं, लेकिन हम फिर पूछते हैं, अच्छा तो मैं इंजीनियर नहीं हूं अभी, मैं अपने आप को इंजीनियर नहीं समझू, बोलते कि नहीं बोलते हैं, क्या मैं डॉक्टर नहीं हूं, क्या मैं इसका पति नहीं हूं, क्या मैं इसका बाप नहीं हूं, अब मैं अपने आप को छोड़ दूं बाप समझना, चलता है द्वंद। भगवान ने ज्ञान दिया कि तुम देह नहीं तुम आत्मा हो, तुम इंजीनियर नहीं हो तुम इंजीनियर के रोल में हो, तुम डॉक्टर नहीं तुम डॉक्टर के रोल में हो, तुम पत्नी नहीं हो तुम पत्नी के रोल में हो, लेकिन अंदर में क्या चलता है? अच्छा ऐसे कैसे चलेगा, मैं अपने आप को पति समझ के अगर व्यवहार नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा? क्या मैं उसके सामने ऐसे हाथ जोड़ के उसके सर पूछता रहूं क्या करूं क्या नहीं, वो देवी मेरे को आज्ञा करेगी और उसके अनुसार मैं चलूंगा क्या? होता है नहीं होता है। भगवान का ज्ञान है इधर और इधर मेरा देह अभिमान ऐसे बोलता है। और धीरे धीरे, क्योंकि कहा ना वो चल रहा है चल रहा है, तो कंटिन्यूस ज्ञान भी सुनने आते ही है, अंदर में चलता भी रहता है और ज्ञान सुनते भी रहते हैं। तो एक दिन गला कट जाता है, एक दिन गला कट जाता है और दिव्य बुद्धि गणेश के पास वो वाला गला कट के कौन सा गला आ गया? हाथी का, अर्थात ही दिव्य बुद्धि। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, मैं आते ही तुम्हें दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि का वरदान दे देता हूं। देता है नहीं देता है? तो ये जो बात थी साधना की चल रही थी ना, तो आत्मा के ऊपर जो साधना क्या है, अतींद्रिय सुख की अनुभूति साध्य है ना मेरा, हो उसके लिए मेथड अपना रहे ना हम। हमें स्वीट साइलेंस का अनुभव करना है, लेकिन स्वीट साइलेंस या अतींद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए जब हम जाते हैं आत्मा के ऊपर जो ये मल है, आप देखो आप सुबह स्नान करके घर से निकलो अपने कारोबार में लगो, शाम होते होते धूल मिट्टी पसीना आएगा, जितना ज्यादा धूल मिट्टी पसीना आएगा उतना थोड़ी थोड़ी देर में इधर उधर खुजली होगी, होगी या नहीं होगी, और जितना साफ होंगे रिलैक्स होंगे। तो और खुजली इधर उधर होना माना क्या होता है? समझो मैं कुछ काम में हूं, मैं एकाग्र थी किसी काम पे, लेकिन यहां पर खुजली फिर गया। इसको कहते हैं विक्षेप। तीन शब्द बोला ना, मल, विक्षेप और आवरण। विक्षेप माना एकाग्रता का उल्टा, भाई मैं एक में लगी थी, वहां से ध्यान हटके इधर आ गया, फिर थोड़ी देर के बाद वहां से फिर से लगा इधर, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, होता है नहीं होता है। इसको कहते हैं विक्षेप, या दूसरे शब्दों में कहें अनेकाग्रता। अनेक में, अनेक मेरे अग्र आ गए ना, एकाग्रता माना मेरे अग्र में एक, और अनेकाग्रता माना मेरे अग्र में अनेक आ जाते हैं। अब जब अनेक अग्र में आ जाए, बाबा को क्या याद करूंगी? साधना में एकाग्रता क्या थी मेरी? बाबा। लेकिन इतनी सारी उसके ऊपर मल चढ़ा हुआ है तो क्या होता है, इधर खुजली उधर खुजली। आवरण क्या है? एक होता है मल और एक होता है आवरण और एक है विक्षेप। जैसे 7 डेज कोर्स का शुरू के ही दिन को याद करो, जो 7 डेज कोर्स किया था, योग सिखाया गया था हमें, तो कहा गया था लेंस का एग्जाम्पल दिया गया ना, योगी का फोटो दिखाते हैं ना उसमें। 7 डेज के कोर्स को फिर से पलटा के देखना किताब को, एग्जाम्पल देते हैं, योगी बैठा है और एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे लेंस को सूर्य की किरणें वहां पर एकाग्र की है, तो नीचे रखा कागज जल उठता है। लेकिन अगर उस लेंस, जिस लेंस पर सूर्य की किरणें फोकस कर रहे हैं, वो साफ नहीं है, पूरी धूल मिट्टी लगी हुई हो, नंबर वन। नंबर टू, स्टेडी नहीं पकड़ा है, हिल रहा है इधर से उधर, विक्षेप। नंबर थ्री, उसके ऊपर कोई ढक्कन ढक दिया कांच के ऊपर, हाँ, कोई कपड़ा लगा दिया, आवरण हो गया। क्लियर हुई? मल क्या है, विक्षेप क्या है, आवरण क्या है। अब ये जो हमारे भीतर में, बाबा ने कहा ना, देहाभिमान के रिजल्ट, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये भी है अंदर, ये आवरण का काम कर रहे हैं। मल हमेशा उसमें है, इसी के कॉन्शियस में, तो गहरी गहरी परतें चढ़ी हुई है। अब जैसे कहा कि इनको जब तक हटाएंगे नहीं, तो मेरा कॉन्वेक्स लेंस कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, आप उन किरणों को वहां पे एकाग्र करके कागज को जला सकते हो? नहीं जला सकते हो ना। इसीलिए देखो, पर्युषण पर्व भी चल रहे हैं। पर्युषण पर्व के अंत में क्या करते हैं? मिच्छामि दुखड़म करते हैं, बाकायदा। ऐसे नहीं कि मन ही मन, कि मैंने उसको विजुअलाइज करके मैंने माफी मांग ली, मैंने विजुअलाइज करके मैंने माफी दे दी। प्रैक्टिकल में करना पड़ता है। जब तक प्रैक्टिकल में नहीं होता है, उसका असर उतना ज्यादा नहीं होता है। तो सारा पर्युषण पर्व, श्वेतांबर का खत्म हो गया, दिगंबर का चालू हो गया, है ना। इनका थोड़ा सा अंतर है, पर दोनों ही इस पर्व को करते हैं, और दोनों का लक्ष्य अपनी अंतर आत्मा की क्लीनिंग, कि इन दिनों में अपने आप को साधना की तरफ बढ़ाओ, साधना के लिए समय लगाओ। और साधना के लिए समय लगाओ माना सिर्फ आरती पूजा, धूप जलाना, ये करना, वो तो ठीक है, लेकिन भीतर बैठ के झांको, मेरे में क्या क्या कमियां हैं, मैंने अपनी इन कमियों के आधार से किस किस को दुख पहुंचाया है, कहां मेरा गुस्सा करना अनिवार्य नहीं था, उचित नहीं था, लेकिन मैंने करके किसी को दुख पहुंचाया है। मेरे एक गुस्से के कारण उसके जीवन की दिशा इधर से इधर हो गई है। होता है कई बार। इसीलिए कहा, भट्टी का समय ये साधना का समय भीतर की चेकिंग। इसीलिए पहले ही दिन कहा था, आपको एकांत का समय इसलिए देंगे हम, सिर्फ कमेंट्री से हम बिजी नहीं करेंगे। क्यों? कमेंट्री से बिजी रहेंगे तो हम खुद को कहां से टटोलेंगे? वो तो भी बाहर से आ रहा है ना, मन कहीं एक ही जगह तो टिकेगा। अगर मैं अभी ध्यान से सुन रही हूं इधर, उधर से कोई आवाज देगा तो मुझे मालूम नहीं, कोई बोले यहां से इतने लोग जा रहे थे आपको पता नहीं, नहीं मेरा उधर ध्यान ही नहीं था, मेरा तो इधर था। अब मैं सिर्फ कमेंट्री ही सुन रही हूं, मैं भीतर की चेकिंग कब करूंगी? और भीतर की चेकिंग करके उस आवरण को ऐसे उठा उठा के बाहर नहीं फेंका तो आत्मा के ऊपर के पर्दे निकलेंगे कब? तो फिर अंदर में जो ज्ञान स्वरूप बाबा का तुम हो ही, तो ज्ञान स्वरूप की किरणें बाहर आए तो कैसे? भाई सूर्य तो है चमकता हुआ पिंड, ताप का पिंड, रोशनी का पिंड, लेकिन जिस आसमान में वो चमकता है वो आसमान पूरा मेघों से आच्छादित हो गया है, तो कहां से उसका ताप, उसकी रोशनी मेरे तक आएगी? नहीं आ सकती है ना, उन मेघों को हटाना पड़ेगा ही, बरसना पड़ेगा तभी तो वो हटेंगे। तो हमें भी छांट छांट कर बरसाना है, अर्थात फील करना है। क्यों हम कह रहे हैं बाबा को पत्र लिखो? क्या करना होता है पत्र में? कहा ना, फिजिकली प्रैक्टिकली उस चीज को, अंदर में जो गलतियां है उसको कॉन्शियस माइंड में लेकर आना है। अभी तो दबी पड़ी है ना, कभी मैंने किसी को दुख पहुंचाया था और वो व्यक्ति सामने आ भी जाए तो हम क्या बोल देते? अरे भूल जाओ ना, मुझे तो याद भी नहीं है। पर परत तो चढ़ी है ना, भी आवरण तो चढ़ा पड़ा है ना, तो आवरण वो चढ़ा पड़ा है तो अंदर आत्मा जैसे कली जिसने खिलना है, लेकिन कली को एक उसके ऊपर उसकी ही साइज वाले कोई टेस्ट ट्यूब में बंद करके रख दिया है, खिले तो कहां खिले वो? उसको ओपन स्पेस तो दो खिलने के लिए। अब आत्मा के अंदर जो ज्ञान, प्रेम, खुशी, जो भी सत्वगुण है वो निकले तो कहां से निकले? इतने सारे आवरण चढ़े हुए। हाँ, गिफ्ट पैक करके देते हैं ना, लेकिन अगर बहुत सारे रैपर 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 चढ़ाए हैं, जब तक वो व्यक्ति उन रैपर को नहीं हटाता गिफ्ट हाथ में आएगी कैसे? नहीं आ सकती है। और इसलिए दो काम हमने कहे थे आपको कि एकांत में क्या करना है, एकांत में बैठकर जो सुना हुआ ज्ञान तो पहले से भी सुना है, क्लास के नाम पर थोड़ा रिवीजन हो जाता है, जो सबकॉन्शियस में दबा पड़ा था क्लास में अभी अभी सुना तो कॉन्शियस में आ गया, अब उसके आधार से मैं चेक करने जा रहा हूं अपने आप को, देखूं सचमुच मेरे में ये गलती है, मेरे में ये अवगुण है, और उसको फील करो कि जी बाबा मेरे में ये गलतियां हैं, कमियां हैं, खामियां हैं, और बाबा मैं इससे छूटना चाहता हूं, और बाबा सचमुच जो आप चाहते हैं बाप समान संपन्न और संपूर्ण स्थिति, सतो प्रधान स्थिति, एकदम परम पवित्र स्थिति, बाबा मैं वैसे बनना चाहता हूं। ये फीलिंग उठे, ऐसे नहीं कि हम तो हैं बाबा के बच्चे, हमको तो लक्ष्य पहले दिन से मिला हुआ है कि हमको देवता बनना है, देखो हम क्या कहते हैं कि आप जैसा सोचते हैं वैसा आपके जीवन में घटित होता है, बोलते हैं ना हम कि जैसा सोचेंगे तो वो सोच वाइब्रेशन के रूप में पूरे ब्रह्मांड में फैलेगी और उसी तरीके के वाइब्रेशन घनीभूत करके आपके पास लेकर आएगी। यहां पर भी वही प्रिंसिपल काम करेगा कि मैं अंदर में ये भावना तो रखूं, गहरी भावना कि हां बाबा मेरे में ये कमियां है और मैं इनसे फ्री होना चाहता हूं, मैं इस मल से अपने आप को मुक्त करना चाहता हूं, इन विक्षेपों से अपने आप को स्वतंत्र करना चाहता हूं, ये जो आवरण काम क्रोध के चढ़ गए हैं मुझे नहीं चाहिए बाबा। बाबा आपने इतना कुछ बताया है कि मेरे भीतर सुख है, शांति है, प्रेम है, मैं उसको निकालना चाहता हूं भी, लेकिन ये रास्ते में आ गए हैं बाबा। बाबा मैं सच्चे दिल से प्रायश्चित करता हूं। प्रायश्चित का मतलब क्या होता है? पश्चाताप का मतलब क्या होता है? पश्चाताप, गलती हो गई है उसके पश्चात भी रियलाइजेशन कर लिया उसका ताप, उस ताप में वो गलतियां गलेगी। प्रायश्चित, चित्त में प्राय, प्राय बोलते ना, जो हमने गलतियां की है वही तो विक्षेप बन के आती है भाई। यहां पे धूल मिट्टी आके बैठ गई है। अब मैं तो अपने काम में लगी हुई हूं ना, लेकिन बीच बीच में खुजली मेरा ध्यान क्या कर देती है, खींच लेती है ना। तो यहां पर भी अंदर हम क्या होता है, आप देखो कमेंट्री भी अगर चले बीच में कुछ आ जाता है या नहीं आ जाता है, विक्षेप आता है नहीं आता है, आता है या नहीं आता है। तो ये है कि बैठकर दिल से फीलिंग के साथ बाबा से बात करनी है कि हाँ बाबा मेरे भीतर में ये है और आपने मुझे ये योग तपस्या का चांस दिया है। बाबा मैं अपने आप को टटोल टटोल के सब कुछ आपके सामने रखकर इन सब से मुक्त होना चाहता हूं, और आप जो कहते हो कि बच्चे तुम तो मेरे ही जैसे हो तो इनको निकालूं, तो जो आप जैसा मेरा स्वरूप है ही उसमें से जब अंदर से बाहर फूटेगा तब तो मैं उसको रियल अनुभव करूंगा ना, वो मेरी अनुभूति में होगा। अभी मेरे श्रवण में है कि मैं पवित्र स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, ये मेरे श्रवण में है, मेरे मनन में है, पर आचरण में आए वो अनुभूति हो तो आचरण में आए ना, और आचरण में आए तो फिर मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, मेरा परिवर्तन हो जाए, आत्मशुद्धि हो जाए मेरी। और इसके लिए कहा कि ये जब सब करने के बाद फिर हम बाबा के साथ, यही कहा था पहले दिन, चेकिंग करना, रियलाइज करना, परिवर्तन का संकल्प लेना, और उस परिवर्तन के संकल्प के साथ परमधाम निवासी बाबा के साथ बैठ जाना। कितनी बार बाबा मुरली में कहते हैं मेरे पास आकर बैठ जाओ, कभी ये नहीं बोलता है बाबा मेरे पास परमधाम में आके बातें करो। बातें करने के लिए कुटिया दी है, बातें करने के लिए कुटिया दी है, परमधाम के लिए आप मुरली में आप छांटना। कहता है मेरे पास आकर बैठ जाओ। दुनिया में भक्ति मार्ग में उपासना, उपवास, उपमाना ही पास, और वास माना बैठना, निवास करना। तो असलियत उसकी ये थी, उपवास माना उसके पास बैठ जाना, और उसके मैं पास बैठी रहूं तो अगर जितना ज्यादा पास बैठी रहूंगी उसके तो तो इधर का ख्याल भी नहीं रहेगा ना। वास्तव में भाव वो था, लेकिन हम तो अनशन बना दिया उपवास को, अनशन का रूप दे दिया हमने। उपवास माना बस खाना नहीं खाना है। अरे भाई, उपवास खाना नहीं खाना वो नहीं था। अब उसके पास बैठोगे तो सचमुच भूख आपकी गायब हो जाएगी, क्योंकि उसके प्रेम में भर जाओगे ना तुम, तो अपने आप भूख लगेगी नहीं। लेकिन हमने वो छोड़ दिया। हाँ, उपासना, भाई आरती तैयार करनी है, धूप जलाना है, बत्ती जलाना है, पर वास्तव में उपासना क्या थी? कि उसके पास बैठ जाना, फिर से उसके पास जब इस फीलिंग के साथ बैठेंगे जो कहा इसके पहले मैंने, कि जो भी मेरे अंदर है बाबा, मैं उससे मुक्त होना चाहता हूं, अपनी जो ओरिजिनल स्थिति जहां से मैं नीचे उतरा, जो आपके जैसी है बिल्कुल मेरी बाबा, मैं उसको अनुभव करना चाहता हूं। जब ऐसी फीलिंग के साथ हम उसके पास जाकर बैठते हैं, फिर मुझे कुछ बोलना नहीं है। तब कहेंगे मेरा शरीर भी स्थिर, मेरा मन भी स्थिर, मेरी बुद्धि भी स्थिर, मेरा दिल भी स्थिर। और तब जाके उस स्थिरता में अपने आप विस्फोट होता है और आवरण के आवरण टूट जाते हैं। आपने देखो, ये पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ों को तोड़ना होता है ना, कैसे करते हैं? एक जगह बम्बारिंग करते हैं और विस्फोट हो जाता है, होता है नहीं होता है? बस बाबा के पास जाके बैठ जाना है एकाग्र स्थिर। मुझे कोई चिंतन चलाने की आवश्यकता नहीं है। वो विस्फोट होते ही, वो आवरण टूटते ही मेरा असली स्वरूप, मतलब वो अपना दिया अपने आप जल जाएगा। आत्मा ज्योति क्यों नहीं बाहर आ रहा है प्रकाश? आवरण है ना, आवरण है ना, ये बल्ब के चारों तरफ कांच का आवरण है, और वो कांच पूरा धूल मिट्टी घी तेल कालिक से भर गया है। अब स्विच ऑन करो, बाहर आएगी क्या प्रकाश रोशनी? लेकिन बाहर वाले कांच को सिर्फ पास साफ कर दो, जल जाएगा बल्ब, तो दीप अपने आप जल जाएगा ना, आत्म ज्योति अपने आप जल जाएगी। मैं न भी बोलूं कि मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूं, तो भी ज्योति की किरणें बिखरेगी। मैं न भी बोलूं कि मैं प्रेम स्वरूप हूं, वो प्रेम के वाइब्रेशन बाहर आएंगे ही आएंगे। ये स्थिति तक हमें पहुंचना है, स्वीट साइलेंस। बाबा अगर ये शब्द यूज करता है तो कुछ अर्थ होगा ना, होगा या नहीं होगा? हमें वो साइलेंस के पल भी अनुभव करने हैं, और इसीलिए आपको एकांत दे दिया गया था। जब ये करते हैं तब हमारी यथार्थ साधना होती है, और तब जाके हमारी पवित्रता की झलक, रूहानियत की झलक, इंटेंसिटी उसकी बढ़ती है, और इंटेंसिटी ज्यो ज्यो बढ़ेगी उतनी उतनी फैलेगी, और जितनी जितनी फैलेगी उतना उतना दूसरों को भी लाभ होगा, अर्थात दूसरों को भी पालना हो जाएगी। यही था ना पूर्वज आत्मा बनके, पूर्वज बनना माना पूर्वज के पास स्टॉक होना चाहिए ना। पूर्वज कैसे देगा अपनी आने वाली जनरेशन को? उसके ही वो, अगर पूर्वज ही इस मंशा से बैठा है कि आने वाली जनरेशन कमा के मुझे खिलाएगी, तो पूर्वज क्या पालना करेगा, क्या पालना करेगा? लेकिन पूर्वज के पास अपना स्टॉक होना चाहिए कि जिस स्टॉक से मैं अपनी जनरेशन को पालूं, तो फिर उस जनरेशन को भी ये सीख मिले, ये समझ मिले कि मुझे भी इतना अभी रिटर्न करना है। तो इतने हद तक हमें जाना है और उसके लिए मौन, और ये मौन तभी सधेगा जब ये कबूल करेंगे भीतर में क्या है मेरे पास जो नहीं होना चाहिए। कबूल करके उससे मुक्ति होने की एक गहरी इच्छा रखें। तभी कहा ना, जैसा सोचेंगे वैसा। तो अगर इतनी गहरी इच्छा रखेंगे तो वो परमात्मा भी उतना छप्पर फाड़ के शक्ति देता है। उसके साथ बैठ जाना। क्यों कहता है मेरे साथ बैठ जाओ? साथ बैठने से ही तो उसकी शक्ति मेरे ऊपर कार्य करेगी। आप देखो, इलेक्ट्रिसिटी चल रही है ना इस समय, तो कई मशीन आदि चल रही होगी, और अचानक पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाए, आपको थोड़ा शांति महसूस होती है या नहीं होती है? होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के कारण काफी सारी मशीनें आदि बहुत कुछ चल रहा था, कुछ पंखे चल रहे थे, तो फ्रिज चल रहा था, पता नहीं क्या क्या, और सब कुछ विज्ञान के साधन तो आवाज करते ही करते हैं। अभी ये घड़ी की टिक टिक नहीं सुनाई देगी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पूरी बंद हो जाए, सब चुप हो जाए, तो टिक टिक सुनाई देती है। समझ में आ रहा है इंपॉर्टेंस सब मौन? तो मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं माना कौन हूं? मैं सच्चित आनंद हूं। सत माना सत्य हूं, चित माना चैतन्य हूं। उस चैतन्यता की अनुभूति जब सब कुछ मौन हो जाएगा तभी तो पता चलेगा। इस घड़ी की टिक टिक तभी पता चलेगी जब बाहर की आवाज सारी बंद हो जाएगी। ऐसे ही वो चैतन्यता का अनुभव, उस चैतन्यता का फ्लो, वो वाइब्रेशन के रूप में, वो प्रेम के रूप में, वो खुशी के रूप में अनुभव होगा ही तब जब मैं अपने तरफ से हर रीति से मौन हूं, स्थिर हूं। सोचो कितनी अंतर्मुखी स्थिति चाहिए इसके लिए। अंतर्मुखी स्थिति चाहिए या नहीं चाहिए? तब हम कहेंगे हमने यथार्थ साधना की। और चूंकि उस यथार्थ साधना में हम स्वयं में से, वो स्रोत में से सब बाहर निकल रहा है, अब मैं डिमांड क्या करूं? मेरे में से ही तो निकल रहा है सब। डिमांड करने की, आराधना करने की आवश्यकता रह जाएगी कोई? तो ये चेक पॉइंट भी बाबा ने उस मुरली में दे दिया कि अगर साधना यथार्थ नहीं है तो फिर आराधना चलेगी। तो आज जो बाबा ने कहा, तुम्हारी रॉयल्टी देवताओं से भी ऊंची होनी चाहिए, तुम्हारा मुखड़ा सदा खिला होना चाहिए, ये तभी संभव होगा जब सचमुच में हम मिच्छा में दुखड़म करके, हाँ, बाबा के सामने तो सब खोलना है ना हमें अपना, और जिसके साथ अगर प्रैक्टिकली कुछ हुआ भी है, इसके लिए बेशक बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, परंतु उस हिम्मत के बाद हमारे विक्षेप से हमें मुक्ति मिल जाती है, है ना? स्नान करने जाएंगे तो ये जो बार बार खुजली हो रही थी ना, अपने आप बंद हो जाती है ना। तो इधर भी तो यही होते रहता है अंदर, और क्या होते रहता है योग में। तभी कहते ना, अरे बिना कमेंट्री के योग करना है तो वो तो अंदर से तो मन कुछ 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 बोलने वाला है। समझ में आ गई बात? तो यथार्थ साधना जाके सिर्फ उसके पास बैठ, हाँ उसके पास बैठना बहुत लंबे समय तक नहीं हो सकता है, और इसीलिए कहा कि एक घंटा पूरा उसके लिए नहीं है, चेकिंग के लिए था, रियलाइजेशन के लिए था, परिवर्तन के संकल्प के लिए था, और फिर अपने आप अपनी कमेंट्री से बाबा के पास जाके बैठ पहुंचो और एकदम साइलेंस में आ जाओ, और इस साइलेंस के रिजल्ट ऐसी आती है। आपने वो बात सुनी है कि एक कमरे में दो वीणा रखी हो, कमरा एकदम खाली है और एकदम द्वार दरवाजे सभी बंद है, और एक वीणा वादक कमरे के दो अलग अलग कोनों में, जैसे ये भी कमरा एक कोने में एक यहां वीणा रखी है, दूसरे कोने में वहां, बाकी पूरा कमरा खाली है, दरवाजे खिड़की सब बंद है। अब एक वीणा वादक उस तार को छेड़ दे, संगीत की लहरियां उठेगी, स्पंदन उठेगा, हवा में ट्रेवल करते हुए उसके पास जाएगा, और उसको वीणा वादक ने टच भी नहीं किया लेकिन फिर भी उसमें से भी संगीत उठ रहा है। सुनी है ये बात? सुनी है या नहीं सुनी है? नहीं सुनी है, ये सत्य घटना है। यहां तक कि दो घड़ियां दीवार पे लगी है। कहते हैं एक वैज्ञानिक था जो किसी राजा का मेहमान था, उस राजा के किले में वो गया, उसके मेहमान के रूप में गया था सिर्फ एक दो दिन के लिए, और डेफिनेटली उसको जो अलग से स्थान मिला था तो उसने नोटिस किया उसके कमरे में दो घड़ियां लगी हुई थी एक ही दीवार पर, और उसने नोटिस क्या किया कि दोनों घड़ियों में, उन दिनों की बात है, 150-200 पहले साल की बात है ये, उन दिनों घड़ियां पेंडुलम वाली होती थी, तो उसने ध्यान दिया कि पेंडुलम दोनों के बिल्कुल एक जैसे चल रहे हैं, अर्थात अगर इस घड़ी का पेंडुलम इस कोने पे है तो इसका भी इस कोने पे है, सेकेंड का कांटा जहां है उसका भी वही है, मिनट का कांटा यहां जो है उसका दूसरी का भी सेम। उसको वंडर हुआ दोनों डिट्टो स्थिति में कैसे हो सकते हैं? आप देखो यहाँ पे घड़ियां लगी है, सब में अलग अलग टाइम है, यहाँ पे देखूंगी तो एक ही बज रहा है, यहाँ पे देखूंगी तो एक से आगे निकल गया है, वहां देख रही हूं तो एक से दो मिनट सिर्फ आगे निकला है ना। उसको बड़ा वंडर हुआ ऐसे कैसे होता होगा, और वैज्ञानिक था तो उसने क्या किया, रात को एक घड़ी को पर्पसली स्टॉप कर दिया खुद होकर, और सुबह में फिर उसको चालू किया, डेफिनेटली टाइम का डिफरेंस हो गया, फिर उसको टाइम को सेट किया लेकिन पर्पसली 4-5 मिनट का अंतर रखा, और वो देखना चाहता था क्या ये अभी फिर से डिटो हो जाएंगे, और उसने देखा 24 घंटे होते होते ये जो 4-5 मिनट का उसने अंतर रखा था वो अंतर जीरो पे चला गया, दोनों सेम पोजीशन पे। उसने सोचा ये संयोग तो नहीं हो सकता है, इसके पीछे संयोग होगा, सोच के उसने ये चेकिंग की, इसके बाद उसको लगा ये संयोग नहीं, इसके पीछे कोई लॉजिक काम कर रही, कोई साइंस काम कर रहा है। आया था एक दो दिन के लिए मेहमान बन के ही, लेकिन वैज्ञानिक माइंड होता है ना, तो उसके पीछे लग गया, और कहते एक डेढ़ महीना रुका रहा जब तक कि उसको पता नहीं चला, और पता चलने के लिए उसने क्या किया, वो जो घड़ियां लगी थी ना उसमें एक बड़ी थी एक छोटी थी, तो वो उसके पास ये जो टाइम डिफरेंस जो बताया ना, छोटी वाली घड़ी का उसने कम कर दिया था फासला, और उसका, और उसने ये महसूस किया कि एक घड़ी बड़ी है और एक घड़ी छोटी है, छोटी को मैंने अंतर पे रखा लेकिन बड़ी वाले के साथ फिर से एक साथ हो गई वो, और इसकी चेकिंग क्या किया तो घड़ी के पास जाके ऐसे कान लगाता था, और देखता था क्या हो रहा है, तो देखता इस घड़ी की जो टिक 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 हो रही है ना, ये टिक 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 हवा से ट्रेवल करते करते उस घड़ी को इन्फ्लुएंस करती है, और उस घड़ी को ऐसा इन्फ्लुएंस करती है कि वो खुद जिस पोजीशन में है उसको उस पोजीशन तक लेकर आती है, और वो दोनों घड़ी वहीं पे, उस घड़ी को कोई मैन्युअली कुछ नहीं किया जा रहा है, और वो इस कंक्लूजन पर आया, ये लयबद्धता, इसको नाम दिया उसने कि अगर कोई बड़ी घड़ी है तो बड़ी घड़ी माना ज्यादा ताकत, छोटी घड़ी माना कम ताकत, तो वो बड़ी घड़ी अपने इन्फ्लुएंस में छोटी घड़ी को लेके अपने जैसा बना देती है। अब सोचो, बड़ी आत्मा, बाबा बड़ी आत्मा तो नहीं, परम आत्मा, और उसके पास जाके मैं बैठ जाऊं, वो भी ऐसे करेगा या नहीं करेगा मेरे साथ, करेगा नहीं करेगा। तो हम जो बोलते ना कि बस चुप बैठ जाएंगे, इसमें योग कैसे होगा, समझ में आ रही है बात? तो ये है हार्मनी की कमाल। इसी चीज को पहले माना, इसको पूरा साइंटिफिकली नहीं प्रूव किया गया, ये तो सिर्फ प्रैक्टिकली जो सिचुएशन देखी गई, फिर बाद में कहते आज से करीब 40-50 वर्ष पूर्व कार्ल गुस्ताव जिंग नाम का एक मनोवैज्ञानिक, उसने फिर इसको बहुत डीप में स्टडी की, पूरा हाइपोथेटिकल जो तैयार करना पड़ता है साइंस के हिसाब से वो सब करके उसने इस लयबद्धता को एक नया नाम दिया, सिंक्रोनिसिटी, और कहा कि ये सिंक्रोनिसिटी का जो लॉ है ये सिर्फ घड़ी पर लागू नहीं होता है, सिर्फ वीणाओं पर लागू नहीं होता है, जीवन के हर आयाम पर लागू होता है। तो परमात्मा और आत्मा भी जब पास पास में बैठ जाएंगे, ये सिंक्रोनिसिटी काम करेगी या नहीं करेगी, करेगी ना, तो बाप समान जल्दी बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे, तो किस पर अटेंशन रखना है अभी? हाँ, समान सुना तो बहुत है, अब स्वरूप बनना है, उसके लिए साइलेंस को बढ़ाओ, उसके लिए भीतर चेक कर करके रियलाइज करो है मेरे में कमियां, बाबा को पूरे दिल के साथ बताओ, प्रैक्टिकल संबंध में जहां जिसके साथ हुआ है प्रैक्टिकली, उस समय भले लगेगा मैं छोटी हो जाऊंगी, ये हो जाऊंगी, पर मैं जो विक्षेप उठते हैं ना अंदर बार बार, उससे मेरी मुक्ति हो जाएगी। तो मेरा लक्ष्य क्या है, यहां दो चार लोगों के सामने सिर उठा करना, या बाबा की दरबार में, बाबा की नजरों में ऊंचा उठना? और वैसे भी क्या कहते हैं, क्षमा वीरस्य भूषणम्। तो अगर क्षमा मांगते हैं या देते हैं, वीरता तो हमारी होगी ना, किसी और की थोड़ी, तो इतनी वीरता हम अपने आप में जगाएं। महावीर का है ना पर्युषण पर्व, तो बाबा तो कहते तुम सच्चे सच्चे महावीर हो, तो उस महावीर को इमर्ज करें कि नहीं करें हम, तब सचमुच का गणेश चतुर्थी, तब सचमुच का पर्युषण पर्व, और सचमुच की ये योग भट्टी सार्थक हो जाएगी। ओम शांति।
मुक्ति मिल।